आज श्रीला कालिया कृष्ण दास जी का तिरुभाव दिवस है. चैतन्य भागवत में श्लोक उदित किया गया है. कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त कर सकता है सिर्फ कालिया कृष्ण दास जी का स्मरण करने मात्र से. तो आज हम कालिया कृष्ण दास जी का स्मरण कर रहे हैं.
He was completely devoted to Lord Nityananda Prabhu.
वह नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत ही समर्पित थे.
And he knew nothing but the lotus feet of Nitai.
और उनको निताई के चरण कमलों के अलावा कुछ भी ज्ञात नहीं था.
He left his body while doing bhajans in Vrindavan.
और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा जब वे वृंदावन में भजन कर रहे थे.
In Brajalila he is Labanga, a cowherd boyfriend of Krishna Balaram.
वृंदावन लीला में वे लबंग नाम के ग्वाल बाल हैं कृष्ण बलराम के.
If you examine the Gora Garadisha Deepika, it is the book which is cataloging the eternal associates of Sri Sri Gaurinitai.
गौरांग देश दीपिका नामक ग्रंथ में पूरा एक सूची दी गई है जो गौर निताय के पार्षदों की.
You will find that the associates of Nityananda Prabhu are almost entirely covered boys from Brajalila.
Nityananda Prabhu ke saath unke jitne bhi gad hain wo adhiktar gwal bal hain Vrindavan Leela mein.
That is because Nityananda Prabhu is Baladev.
Kyunki Nityananda Prabhu Baladev hai.
Riva!
Riva!
On the other hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is predominantly Radharani actually. He is combined incarnation of Radha and Krishna. But practically speaking, it is fair to say that Chaitanya Mahaprabhu is more on the Radharani side than on the Krishna side.
और दूसरी तरफ अगर हम देखें श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण दोनों के अवतार हैं, परंतु यहाँ पे ये कहना बिल्कुल ठीक होगा अगर हम ये कहें कि वे ज्यादा राधा रानी की तरफ है और कम कृष्ण की तरफ.
They were most of the manifest Nitya Lila, Nitya Siddha, intimate associates of Mahaprabhu, mostly gopis and manjaris.
जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं जिन्होंने उनकी लीलाएं स्फुरित की वे अधिकतर मंजरीज हैं.
So this creates the sweetness of Gauralila, both cowherd boys and gopis, manjaris, all participating in Gauralila because Mahaprabhu is Sri Sri Radha and Krishna.
तो जो Gauralila है, Gauralila की जो मधुरता है इसी बात से है क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गोपियां और सखा दोनों ही Gauralila में भाग ले रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है.
Well, today we are reading from Srila Prabhupada Lilamrita, chapter 2 of the 5th volume.
आज हम श्रीला लीलामृत से पाठ कर रहे हैं पांचवा वॉल्यूम का दूसरा अध्याय.
This section begins with Bombay, November 1971.
तो जो इसका प्रारंभ होता है वह है बंबई में नवंबर 1971.
So I'll read one paragraph and then you translate, okay? Read the translation.
भक्तजन साल भर से बंबई के मध्य में आकाश गंगा इमारत की सातवीं मंजिल पर दो अपार्टमेंट में रह रहे थे, किंतु प्रभुपाद को इससे संतोष नहीं था. वह बंबई में भूमि चाहते थे जिस पर भवन बनाया जा सके और उनके कार्यों का विस्तार हो सके. विकृत संकल्प थे. प्रातः कालीन भ्रमण के बजाय वे अपनी कार में दूर तक नगर के विभिन्न भागों का निरीक्षण करने के लिए जाने लगे थे.
This is the first paragraph. For a year the devotees had been living at Akash Ganga address, two apartments on the seventh floor of a building in in the heart of Bombay. But Prabhupada was not satisfied with this. He wanted land in Bombay to build on and to expand. He was determined. Instead of his usual morning walks, he would take long rides in his car to observe various parts of the city. I'll go on to the next paragraph and then you translate. Because many of the ISKCON life members lived in aristocratic Malabar Hill, Prabhupada's disciples thought it a good place for a temple. On several occasions, Prabhupada rode to the top of Malabar Hill and walked around various properties, considering certain large buildings as possible temples, but for one reason or another, he judged them all unacceptable.
जो कि इस गांव के बहुत से आजीवन सदस्य राजसी मलबार हिल में रहते थे, अतः प्रभुपाद के शिष्यों का विचार था कि मंदिर के लिए वह बहुत अच्छा स्थान होगा। कई अवसरों पर प्रभुपाद मलबार की चोटी तक कार में गए और ये सोचकर उन्होंने कई जायदादों का चक्कर लगाया कि उन पर खड़े कुछ विशाल भवन मंदिर बन सकते हैं, किंतु किसी न किसी कारण से उनमें से कोई भी उन्हें स्वीकार्य नहीं हुए।
Then in November, a Mr. Nair offered to sell ISKCON 5 acres in Juhu, practically on the shore of the Arabian Sea. As soon as Srila Prabhupada approached the land, he remembered having seen and considered it years before, in August of 1965, during the weeks just before he had left for America. He had been staying at Scindia Colony, that's the shipping company. In evenings he had gone to the home of Scindia Steamship Company owner, Mrs. Sumati Muraji in Juhu, where he had read and explained Srimad Bhagavatam for her and her guests. Several times he had passed this very property and had thought what a good location it would be for an ashram and a Radha Krishna temple. Although his attention had been absorbed in the task of leaving India, it still considered the Juhu land. Now, he was again in Juhu, reconsidering the same land he had noticed years before. He took it as a reminder of Krishna.
तब नवंबर में एक श्रीमान नयर ने अरब सागर के तट पर जुहू स्थित 5 एकड़ जमीन को इस्कॉन के हाथों बेचने का प्रस्ताव रखा। जो ही प्रभुपाद इस भूमि पर पहुंचे, उन्हें स्मरण हो आया कि वर्षों पूर्व उन्होंने इसे देखा था और इस पर विचार किया था। अगस्त 1965 में अमेरिका जाने के कुछ सप्ताह पूर्व वे सिंधिया कॉलोनी में रह रहे थे। संध्या समय वे सिंधिया स्टीम कंपनी के मालकिन श्रीमती सुमती मुरारजी के जुहू स्थित घर जाकर उन्हें तथा उनके अतिथियों को श्रीमद् भागवतम पढ़कर सुनाते और समझाते थे। वे कई बार इस भूमि पर से होकर आ गए थे और उन्होंने सोचा था कि आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर के लिए ये कितनी अच्छी जगह हो सकती है। यद्यपि उस समय उनका ध्यान भारत से बाहर जाने के कार्य में केंद्रित रहता था, तो भी उन्होंने जुहू की भूमि के बारे में सोचा था। अब वे पुनः जुहू में थे और कई वर्ष पूर्व देखी गई भूमि के बारे में फिर विचार कर रहे थे। उन्होंने इसे कृष्ण का स्मरण पत्र समझा।
The next paragraph. The land was overgrown with tall grasses and bushes, and many coconut palms stood throughout. In the back of the property were several tenement buildings, that means rental buildings. They were not in very good condition either. Tenements suggest not very good condition. They were rental buildings. The land bordered on Juhu Road, the main traffic artery back to Bombay, 18 miles to the south. A broad expanse of beach on the Arabian Sea was a brief walk away.
ये भूमि ऊंची घास और झाड़ियों से आच्छादित थी और उस पर सर्वत्र नारियल के कई वृक्ष खड़े थे। इस भूमि के पिछले भाग में कई इमारतें थीं। ये भूमि जुहू सड़क के किनारे थी जो 18 मील दक्षिण स्थित बंबई के लिए यातायात की मुख्य सड़क थी। थोड़ी दूरी पर अरब सागर का विस्तृत समुद्री किनारा था।
It's significant that Srila Prabhupada had been contemplating this property as early as 1965.
ये विशेष बात है कि जो श्रीला प्रभुपाद हैं 1965 में भी ये जो प्रॉपर्टी वो देखने आए थे इस पर विचार कर रहे थे.
That was 6 years earlier. This is November. We're talking here about November of 1971. So 1965 would be 6 years earlier.
जो ये प्रसंग है 1971 में हुआ और 1965 में श्रीला प्रभुपाद ने ये प्रॉपर्टी देखी थी 6 साल पूर्व.
So Sri Prabhupada is commenting here that Krishna was reminding Srila Prabhupada about this property.
सत्स्वरूप महाराज इसमें लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण श्रीला प्रभुपाद को स्मरण करवा रहे थे इसी प्रॉपर्टी के बारे में.
This comment by Satsuru Maharaj is very significant.
तो जो सत्स्वरूप महाराज ने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ये बहुत ही विशेष है.
Indicates that Shri Radha Rasa Bihari, they actually chose the mount.
वास्तविकता में श्री श्री राधा रास बिहारी ने इस भूमि को चुना था.
Arriba! Come on, that was very weak. Arriba!
Arriba!
Now the next paragraph that we read says, describes how the land was overgrown with tall grasses and bushes.
जो हमने अगला पैराग्राफ पढ़ा वह हमें समझाता है कि किस प्रकार से जो भूमि थी उस पर बड़े बड़े झाड़ फूस थे और बड़े बड़े वृक्ष थे.
Anyone present here ever been to the Juhu temple?
आप में से कोई यहाँ पे जुहू मंदिर कभी गए हैं?
So you have to draw in your mind's eye a completely and totally different picture from what you see today. Totally different picture.
तो जो भक्त वहाँ पे गए हैं जुहू मंदिर देखा है उनको अपने मन में ये यहाँ पे जो उस समय का जो वातावरण और पिक्चर बताई गई है वो बिल्कुल अलग है. तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा.
There is clearly stated that the Juhu property is located about 18 miles from central Mumbai. 18 miles means approximately 36 or more, almost 40 kilometers, you know. Almost 40 kilometers to downtown Mumbai from the Juhu property.
जो ये भूमि थी वह 18 मील दूर थी दक्षिण से बंबई से. 18 मील का अर्थात लगभग 40 किलोमीटर दूर थी जो मुख्य सड़क थी दक्षिण बंबई के
लिए. So this description that the land was overgrown with bushes and tall grasses, this description is very important actually in understanding in the context.
जो यहाँ पे बताया गया है कि जो भूमि थी ऊंची घास और झाड़ियों से आच्छादित थी और उस पर कई वृक्ष थे ये बहुत ही विशेष बात है यहाँ पे जो बताई गई है.
Those days that area was way out in the countryside. 36 of almost 40 kilometers from Mumbai, it was way out in the countryside. Nobody went there.
उन दिनों जो ये भूमि थी जो मुख्य बंबई है उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर थी वहाँ कोई भी नहीं जाता था.
Although apparently Srimati Maharaji lived in Juhu, but generally it was just a small village. It was not developed. There were no huge apartment buildings the way they are now. Everything was very, you could say, primitive, just open countryside.
हालांकि यहाँ पे लिखा है कि श्रीमती मुरारी जी जुहू में रहती थी परंतु उन दिनों जो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सोसाइटी अपार्टमेंट वगैरह इस तरह से डेवलप्ड नहीं थे वहां पे जो रहने की जो परिस्थितियां थी बहुत ही सरल थी.
I myself went there in 1974. That's only 3 years after this entry in the book. Arriba!
महाराज बता रहे हैं कि 1974 में यानी 3 साल बाद 1971 के वहां पे व्यक्तिगत रूप से गए थे.
So this Juhu property has a history.
यहाँ पे जो जुहू प्रॉपर्टी है उसका एक इतिहास है.
Because it was 40 kilometers away from Mumbai and nobody went there. It was Juhu was just a small village, you know. It was not very. It wasn't cosmopolitan. It was a village in those days.
जो यहाँ पे भूमि है 40 किलोमीटर दूर थी मुख्य बंबई से तो जुहू उन दिनों एक बहुत ही छोटा गांव था.
Even some of Srila Prabhupada's leading disciples had a very tough time accepting that Prabhupada was selecting this land, jungle land, out in the middle of nowhere. As far as they were concerned, they couldn't see. They could not see what was going to happen out there. Couldn't see it. There's no way they could see it.
Srila Prabhupada ke jitne varishth shishya bhi the, unka jo wahan pe bahut hi sangharshmay samay nikla, wo bilkul bhi nahi dekh pa rahe the ki yahan pe ye kaise sambhav hoga ki mandir banana.
At least one leading disciple thought it was an outright mistake.
और एक शिष्य ने तो ये भी सोचा कि श्रीला प्रभुपाद ने शायद गलती की है इस भूमि का चुनाव करके.
But as Satsuru Maharaj is suggesting here that actually it was Krishna that selected the property. So he gave the interdiction of Prabhupada. That's the point. That's what Saktivishavatar means.
और Satsuru Maharaj लिख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो भूमि है व्यक्तिगत रूप से कृष्ण ने इसका चुनाव किया.
Of course, everyone receives inner dictation from Krishna. They, did you see the devotees are eternal liberated souls? They don't have a monopoly on it. Certainly not.
भगवान कृष्ण ने श्रीला प्रभुपाद को अंदर से इसके बारे में प्रेरित किया था. तो यहाँ पे ये अर्थ होता है एक शक्ति विश अवतार का. हम सबको भगवान कृष्ण अंदर से कुछ ना कुछ प्रेरित करते हैं.
Neophyte devotees are also receiving inner dictation.
यहाँ तक कि कनिष्ठ भक्त भी, उनको भी अंदर से प्रेरणा मिलती है भगवान कृष्ण से.
The difference is that devotees who acknowledge Krishna's inner dictation and who are able to hear it more clearly, not with the ears or not as a audible voice, but just, you know, Krishna is quite capable. He has his way of communicating through the heart.
जो भक्त ये स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण अंदर से उनको प्रेरणा देते हैं और इसको सुन पाते हैं इन कानों के माध्यम से नहीं, भगवान कृष्ण के अपने तरीके होते हैं अपना संदेश भक्त तक पहुंचाने के लिए.
वायरलेस सिस्टम
बिना तारों का सिस्टम.
Like a mobile phone, you can't you see any wires connected to the ceiling or anything? No.
जैसे कि मोबाइल फोन में हम देखते हैं कोई तार वगैरह नहीं लगी होती.
That's a mundane material sound vibration. It's receiving a sound vibration electronically. It's mundane. That's inferior energy.
तो हम ये देखते हैं कि कोई साधारण सा ये इंस्ट्रूमेंट है जो भौतिक पदार्थ है वह भी बिजली के उपकरणों से उनके सिग्नल से मैसेज रिसीव करता है.
So why should the Ladini Shakti, the messages of the Lord, be easily transmitted by the Lord Himself, because He's Chaitya Guru, He's the Guru within the heart, so He's the antenna, He's both the broadcaster and the antenna, whereby the devotee can get the message.
The Lalani Shakti ke dwara Bhagwan apna jo sandesh hai, kyun bhakt tak nahi pahuncha sakte?
Actually, without this inner dictation, we would be unable to do anything. We would just be, brain dead.
Bhagwan Chaitya Guru hai. और वास्तव में देखा जाए तो बिना इस अंदर से जो प्रेरणा मिलती है भगवान के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. हम संपूर्ण रूप से विहीन हैं.
The difference between the neophyte and the more advanced devotee is that the more advanced devotee is able to acknowledge and you could say the degree of accuracy of reception to the message of Krishna coming from the heart is greater than a neophyte, where there may be some interference from the mind or false ego, etc. Whereas the more advanced devotee, the message from Krishna is more clear.
एक कनिष्ठ भक्त में और एक उन्नत भक्त में यही अंतर है कि जो कनिष्ठ भक्त है वह ज्यादा पहचान नहीं पाता, परंतु जो उन्नत भक्त है वह बिल्कुल सही मात्रा में उसको पता लग जाता है कि ये भगवान के द्वारा प्रेरित किया गया है, ये मन या झूठे अहंकार से नहीं आ रहा. तो जो एक उन्नत भक्त होता है वह भगवान के द्वारा जो अंदर से उसको प्रेरणा मिलती है उसको वह समझ सकता है, जबकि जो कनिष्ठ भक्त होता है वह इसको नहीं समझ पाता.
In the case of the Nitya Siddha or eternally liberated devotee or Mahabhagavats, these highly advanced souls situated in Prema Bhakti, there is no mistake at all that the dictation from Krishna is so crystal clear, like we can have any conversation of that kind of clarity they're having. There's no confusion, no static, no incompleteness. The self-realized soul receives infallible
जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं जो आत्म साक्षात्कार में पूर्णता पा चुके होते हैं मां भागवत, उनको तो जो ये अंदर से प्रेरणा मिलती है भगवान के द्वारा, ये इतनी स्पष्ट होती है कि जैसे कि दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हो।
Well, this is why Sadhguru Maharaj is suggesting here that actually Krishna selected the property.
और इसलिए सत्स्वरूप महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान ने वास्तव में ये भूमि को चुनाव किया।
Now Maharaj has not mentioned the name of the man. It says Mr. N, but it's the infamous Mr. Nair.
तो यहाँ पे पुस्तक में उन व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, उनकी जगह लिखा है मिस्टर श्रीमान एन, परंतु यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नैयर है।
नैयर, नैयर, एन ए आई आर, नैयर।
तो ये बहुत ही बदनाम व्यक्ति नायर है।
He was one who attempted to cheat Prabhupada out of, after selling the property, he used some shrewd advocates to try to cheat Prabhupada out of the property. There was a big problem. Prabhupada had to work very hard to reclaim the property after the cheating by Mr. Nair.
तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद से कुछ धोखाबाजी करनी चाहिए इस भूमि को लेकर, और श्रीला प्रभुपाद को बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा इस धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए।
मिस्टर नेहर यूज्ड टू बी अ रियल एस्टेट मैन, ही ओन्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी आउट इन द जुहू एरिया।
तो जो ये श्रीमान नैयर थे, ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से ये भूमि हड़पना चाहते थे।
Once Prabhupada said, because there was such a fight with Mr. Nair, I mean, he was a real demon, you know.
तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि जो श्रीमान नैयर हैं इनके साथ जो लड़ाई थी, और ये जो व्यक्ति हैं वास्तव में एक दानव थे।
Once Srila Prabhupada said, everyone will go back to home, back to Godhead, except for Mr. Nair.
और एक बार श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि हर कोई भगवत धाम चला जाएगा सिवाय एक व्यक्ति के, वह ये श्रीमान नैयर।
That gives an idea of how demoniac he was. So envious of Krishna and trying to cheat a pure devotee of the Lord. Very, Prabhupada had to work very hard to reclaim the property after the cheating by Mr. Nair.
तो इस बातों से पता लगता है कि जो ये व्यक्ति थे कितने असुरिक प्रवृत्ति के थे, और श्रीला प्रभुपाद को बहुत ही गहरा संघर्ष, बहुत ही गहरे मेहनत करनी पड़ी इस भूमि को वास्तव में लेने के लिए।
Of course, at the time, of the fight over the property, Mr. Nair's wife was naturally supportive of him.
और स्वाभाविक रूप से जब ये लड़ाई चल रही थी भूमि को लेकर, तो जो नायर जी की जो पत्नी है वह अपने पति का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी सहायता।
After the death of Mr. Nair, his wife underwent a change of attitude towards devotees.
और जब श्री नायर की मृत्यु हो गई तो जो उनकी पत्नी है उनके रवैये में पूरा बदलाव आ गया भक्तों के प्रति।
She was actually very apologetic. She realized they had done wrong.
और उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने गलत किया था।
Well, Mr. Nair is wherever he is, you know, like the story of King Driga, you know, certainly he has to suffer in hell for his sinful activities, certainly.
और ये कोई भी व्यक्ति हो इस समय कहीं भी हो, ये राजा नृग की तरह है, उनको निश्चित रूप से इसका खमियाजा भरना पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ित होंगे।
But like the story of King Mir, first he had to suffer the bad karma for a small mistake in the body of a lizard.
और श्रीमान जो नायर है इनको भुगतना पड़ेगा जो भी इन्होंने कार्य किए।
But then he was, by his pious activities, he was able to be touched by the Supreme Personality of Godhead and delivered from the well by the hand of Krishna. So we see that there was a combination of bad karma and good karma, beyond good karma, devotional benefit and sinful reaction, both can be within the same person.
जैसे कि महाराज नृग के जीवन में देखते हैं, उन्हें अपने पापमय कार्यों के लिए उन्हें एक छिपकली के शरीर में बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ी और बाद में क्योंकि उन्होंने पुण्य कार्य भी किए थे इसलिए वे भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के जीवन में कुछ पुण्य और कुछ पापमय कार्यों का कैसा मिश्रण होता है।
So after suffering in hell for a very long time for trying to cheat a Nityasiddha devotee, after that, who knows how long he'll have to suffer in hell? Very long time. Very severe sins.
तो नरक में जाके इसका पीड़ा सहने के बाद किस कोई ये नहीं कह सकता उनको कितनी देर नरक में रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक महाभागवत के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया।
Of course, knowing the severity of the sinful reaction, Srila Prabhupada may have forgiven him, but he didn't talk like that, though. He never said that. You know, he was rather upset with Mr. Nair because of the degree to which he tried to reclaim that property by cheating, foul play.
और हो सकता है श्रीमान नायर को श्रीला प्रभुपाद ने माफ कर दिया हो, परंतु श्रीला प्रभुपाद ने कहीं भी ऐसा कहा नहीं है, क्योंकि जो ये व्यक्ति थे ये बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी करना चाहते थे भक्तों के समाज के साथ।
So after suffering in hell, then Mr. Nair one day will get the benefit of having seen a Nityasiddha devotee face to face and having said the name of Krishna so many times and having seen so many Vaishnavas. No doubt he heard the holy name also. Just by being around devotees, he would have heard said the name of Krishna. So first he has to suffer his sinful reactions. Then, in some future day of Brahma, he will get the benefit of having seen a Mahabhagavat and having said the name of Krishna. That benefit will come later, but first he has to suffer.
और नरक में पीड़ा सहने के बाद, वहाँ पे भुगतान भरने के बाद, क्योंकि जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने भक्तों के दर्शन किए थे, कई बार कृष्ण का नाम उच्चारण किया था, तो इसलिए इनको इनका फल मिलेगा। ब्रह्मा जी के किसी अगले दिन में जाके इनको अपने इस पुण्य कार्य का फल प्राप्त होगा।
So whatever a Mahabhagavat does, and in general whatever a pure devotee does, there is benefit on the absolute plane, though there may be temporary material reactions, but the benefit is absolute.
तो जो भी कुछ महाभागवत या शुद्ध भक्त करते हैं वे एब्सोल्यूट लेवल पे सबके लिए लाभकारी होता है। देखने में हो सकता है कि कुछ समय के लिए कुछ भौतिक रिएक्शंस मिले किसी व्यक्ति को।
Today, all that's left is Mr. Nair. Is there's one road, small road, that leads from the temple, our temple, down to the beach. It's called Nair Road. That's all that's left of his legacy, other than trying to cheat Prabhupada.
और जो आज इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी बचा है वह सिर्फ यही है कि वहां पे मंदिर से एक रोड निकलती है जिसका नाम नैयर रोड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा।
When I was there, I first went to India. I first came to India in this lifetime in 1974.
महाराज बता रहे हैं कि वे 1974 में भारत आए।
At that time, of course, there was no building there. You know, there was no temple building on the Juhu property.
और वहाँ पे जुहू की भूमि पर कोई भी मंदिर का इमारत नहीं थी।
I guess by 1974, the fight with Mr. Nair must have been over. I don't know the timing exactly, but anyways, by the time I got there, the land was secured. So it's 3 years after this date. This is 1971. I got there in 1974.
तो 3 साल बाद 1974 में महाराज आए और महाराज बता रहे हैं कि उस समय तक ये जो लैंड है इसको सुरक्षित कर लिया गया था इस्कॉन के केंद्र में।
Well, it's hard for anybody to imagine who has been to the Juhu property now. It is like it could be called New Dwarka. It's very grand, everything very grand, you know.
और अभी अगर कोई वहाँ जुहू पे मंदिर देखेगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि उन दिनों कैसे हालात थे ये समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही विशाल मंदिर है और जैसे कि नई द्वारका में मंदिर है बहुत ही ऐश्वर्य से पूर्ण।
Shishi Radha Rasa Vihari, although they are the same deities, and they were the same deities in those days, but actually they were just in a small shed you know, shed. This is a very small. The deity room was smaller than our altar, and it was just a tin roof, a cheap tin roof, and that's all the deities had in those days.
हालांकि जो वहाँ पे विग्रह है श्री राधा राज बिहारी ये वही विग्रह है जो 1974 या पहले उस समय के थे वही सेम विग्रह है परंतु उन दिनों जो मंदिर होता था बहुत ही छोटा होता था यहाँ पे जितना ऑल्टर है इससे भी छोटा होगा सिर्फ एक टिन लगा हुआ था ऊपर से और बहुत ही छोटा कक्ष था जिसमें उन विग्रहों को रखा जाता था
so 1974, So I was a double president at the time.
Maharaj bata rahe hain ki 1974 mein ve mandir ke adhyaksh the.
And so I left a brahmacharya in charge of the temple and I thought this may be the only chance I get to associate with Prabhupada. Of course I was right. I left the brahmacharya in charge of the, it was St. Louis, Missouri. Central United States, small temple.
The United States में एक छोटा मंदिर था वहां पे महाराज ने उस मंदिर को छोड़ा और यहाँ पे भारत में आए क्योंकि महाराज ने सोचा कि अगर प्रभुपाद का संग करना है तो शायद ये आखिरी मौका है
So hoping that he would keep things going okay, I spent about 2 months, maybe less, but month and a half at least at Juhu. There's a whole series of morning walks. Recorded of, at that time, Srila Prabhupada's walks on Juhu Beach.
So, Maharaj बता रहे हैं दो महीने या उससे थोड़ा सा कम समय उन्होंने वहाँ बिताया कि जिससे चीजें चलती रहें और वहाँ पे जू पे जो श्रीला प्रभुपाद सुबह के समय सैर करते थे तो वो recorded है अभी.
Srila Prabhupada had a very dear friend, his name was Dr. Patel.
Ashila Prabhupada ke ek bahut hi vishesh mitra the Dr. Patel.
Every morning he would come on that walk with Srila Prabhupada.
Aur har subah ve Srila Prabhupada ke sath sair karne ke liye wahan pe aaya karte the.
And I think that all of those conversations are recorded and are in the of course they must be mentioned in Leelamrita also.
Aur unke...
it was a very significant time period in which Prabhupada was giving Dr. Patel a great deal of association.
उनके जो वार्तालाप हैं अभी रिकॉर्ड की गई हैं और लीलामृत में भी उसके कुछ भाग आते हैं तो बहुत ही विशेष बात है क्योंकि शीला प्रभुपाद अपना संघ बहुत ही विशेष संघ दे रहे थे डॉक्टर पटेल को
डॉक्टर पटेल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शीला प्रभुपाद
डॉक्टर पटेल थे वे शीला प्रभुपाद को बहुत चाहते थे
बट It was very interesting. If you ever listen, if you know, if anyone that speaks English should listen to those recorded conversations of Prabhupada and Dr. Patel.
अगर आप में से कोई अंग्रेजी भाषा समझ सकता है तो आप इन वार्तालाप को जरूर सुनिए जो शीला प्रभुपाद और डॉक्टर पटेल के बीच में हुई
Their relationship was one of friendship.
उनके बीच में जो संबंध था वह मित्रता का था
But sometimes Prabhupada would make a comment to Dr. Patel with a bit of a bite to it.
So Srila Prabhupada kai baar Dr. Patel se aise baatein karte the jo thodi vyangatmak hoti thi.
Although normally his talks were friendly.
Aur zyadatar jo unki baatein hain bahut hi jaise mitron ke beech mein hoti hain waise hoti thi.
One day Prabhupada said to him, "The difference between you and my disciples is that they surrender, you cannot."
एक दिन शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि मेरे शिष्यों में और आप में एक अंतर है कि जो मेरे शिष्य हैं मुझे समर्पित हैं आप नहीं करते
They'll do whatever I say.
जो मेरे शिष्य हैं वे कुछ भी करेंगे जो मैं कहूंगा
Well, he tried to get around that statement, but there was really nothing he could do because ultimately he would have to. He didn't really quite admit it, you know. But the fact is that. Disciple means surrender, so he could not surrender to Prabhupada. He had to keep it at this level of friendship, and he couldn't go any further.
So, उन्होंने कुछ ना कुछ कहके इस वाक्य से बचने का प्रयास किया, परंतु वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सत्य था. क्योंकि जो शिष्य है, उसका वास्तविक अर्थ है कि वह जो गुरु को समर्पित हो. परंतु जो डॉक्टर पटेल हैं, एक लेवल से ज्यादा वे प्रभुपाद को समर्पित नहीं कर सकते थे तो इसलिए उनका जो सम्मान था सिर्फ मित्रता का था और इससे आगे वे नहीं गए.
Many times Dr. Patel would say something on purpose to aggravate Srila Prabhupada. Purposely he would say something to, you know, annoy Prabhupada. On purpose he would do that. In sort of a joking mood, you know.
कई बार जो डॉक्टर पटेल है जान बूझ कर कुछ ऐसे वाक्य कहते थे कि जिससे वे श्रीला प्रभुपाद को उचका सके और कई मजाक में ऐसे ऐसे वाक्य कहते थे कि जिससे श्रीला प्रभुपाद को थोड़ा उनका गुस्सा पड़े.
My god brother Yashobani Nandan, he was also on that same series of walks.
महाराज बता रहे हैं कि उनके गुरु भाई यशोमती नंदन भी उसी सुबह की सैर पे थे.
Sometimes the things that Dr. Patel would say as disciples of Prabhupada, we would start to get really hot under the neck beads, the things that he would say. The conversations are in English. Those walks are all in English. So those who speak English, there's no excuse. Huh? Well, he would throw some Hindi in the conversation, yeah, but most of it's in English.
तो जो महाराज के गुरु भाई हमें बता रहे थे कई बार डॉक्टर पटेल ऐसे वाक्य कहते थे कि श्रीला प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते हमें बहुत अंदर से गुस्सा आता था उनके ऊपर.
So it certainly appeared that he was arguing with Prabhupada. Sometimes he seemed to be crossing the line when he was arguing with Prabhupada in a friendly way or in a joking way. But sometimes it seemed to us as disciples that he was crossing the line and becoming envious. That's why we, not envious, exactly, but offensive. It seemed to us that he was becoming offensive. Although he was a friend of Prabhupada, that's when we started to get pretty hot under the neck beads. Like he wanted to go up and tell the man, shut up already, you're an offender. But because he was a friend of Prabhupada, we couldn't do that.
श्रीला प्रभुपाद के मित्र होने के नाते तो कई बार वे ऐसे वाक्य कहते थे या कई बार मजाक में भी कई बार वो ऐसे वाक्य बोल देते थे जिससे लगता था कि अब वे लाइन को पार कर रहे हैं, अब शायद वे श्रीला प्रभुपाद को के प्रति अपराध कर रहे हैं. परंतु हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वे श्रीला प्रभुपाद के मित्र थे. हमारा अंदर से बहुत इच्छा होती थी कि उनको कहें कि अपना मुंह बस अब बंद करो, परंतु श्रीला प्रभुपाद के मित्र होने के नाते हम उनको कहते नहीं थे.
Shlokas, and Prabhupada appreciated that, you know. He would quote many, and he would take the jnani position. He wouldn't automatically agree with Prabhupada.
Dr. Patel, jo hai, shastra mein unka bahut gyan tha, ve kahi bahut sare shlok udit karte the, aur ve ek jnani ki sthit, jnani ko jnani ki tarah bolte the.
So they would have these shastric debates, and Dr. Patel would play jnani.
तो उन पर शास्त्रों के ऊपर डिबेट्स होती थी, आपस में चर्चा.
But because they were generally in a joking mood, it was hard to say how much was what he really felt due to not being situated in pure devotional service, how much it was due to misunderstanding and how much it was due to role playing. Sometimes there was a gray zone. It was hard to say. Chances are they also had some misunderstandings, along with the fact that he was interacting in a he was sporting with Prabhupada with some debating mood. And, you know, Prabhupada enjoyed that actually most of the time.
और श्रीला प्रभुपाद और उनके बीच में बहुत वाद विवाद होता था शास्त्र के ऊपर आधारित. और जो डॉक्टर पटेल हैं एक ज्ञानी का रोल लेते थे, जिस प्रकार से ज्ञानी बोलता है, तो कई बार ये समझना मुश्किल होता था क्योंकि वे ऐसे रोल में हैं, इसलिए ऐसे वाक्य कह रहे हैं या उन्हें वास्तविकता में इसके ना समझ है, कहीं कुछ ऐसे वाक्य कहते थे. परंतु श्रीला प्रभुपाद को ये वाद विवाद बहुत पसंद था. अधिकतर समय पे वे इसमें बहुत रुचि रखते थे और कई बार वो डॉक्टर पटेल ऐसे वाक्य कहते थे कि जो समझ मुश्किल होता
था. वन टाइम देयर वाज सम डिस्कशन as to why Dr. Patel was being so, you know the word contentious? No. Argumentative, you know.
कहीं एक बार इस विषय पे भी चर्चा हुई कि जो डॉक्टर पटेल हैं इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव मूड में क्यों हैं. इतना ज्यादा मतलब बेफिजूल आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं.
And sometimes it seemed like Dr. Patel was arguing with Prabhupada from an egotistical position, not just from a standpoint of philosophy, but it seemed sometimes that he was actually thinking that his knowledge was superior to Prabhupada. That's when we would become very hot under the neck beads.
So, कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि वह प्रभुपाद से इसलिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, परंतु कि वे अपने आप को प्रभुपाद से ऊपर दिखाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता था. तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद के शिष्य को कई बार बहुत गुस्सा आता था उनके ऊपर.
So once Prabhupada said something about the way he was talking, you know, generally Prabhupada just tolerated and he enjoyed the sporting mood, but sometimes also when he would become go more a little more on through the visits, and sometimes once Prabhupada said something,
अधिकतर समय श्रीला प्रभुपाद इसको सहन कर लेते थे और प्रभुपाद भी बहुत रिलिश करते थे जो एक वार्तालाप होता था, परंतु एक समय श्रीला प्रभुपाद ने एक वाक्य कहा.
Once again in a joking mood,
ये भी मासिक मजाकिया तौर पे कहा.
Dr. Patel said, well, if I don't, you know the word aggravate, if I don't aggravate you, then you won't talk. He was suggesting that if I don't play an arrogant jnani, then you won't talk. That it'll just be a silent walk. That was his excuse.
So Dr. Patel ne kaha ki agar main aapko उचकाऊ ना या आपको मैं थोड़ा गुस्सा ना दिलाऊं या मैं एक घमंडी ज्ञानी की तरह बिहेव ना करूं तो आप बात ही नहीं करेंगे, तो जो सुबह की सैर है बहुत ही शांतिमय होगी.
After he outlives, of course, he left his body some time ago. Dr. Patel was not a young man, you know. He was not a young man.
तो उसमें डॉक्टर पटेल जो थे वह युवक नहीं थे और उन्होंने कुछ समय बाद शरीर छोड़ा था.
But after Prabhupada's departure, so he outlived Prabhupada's body.
Srila Prabhupada ke tirubhav ke baad hi unhone sharir chhoda.
As far as I can recall, that Dr. Patel was still alive in 1977.
Jahan tak Maharaj bata rahe hain, main yaad kar sakta hu, jis tarah mujhe smaran aa raha hai, Srila Prabhupada ke tirubhav ke baad hi unhone sharir chhoda.
So after Prabhupada's departure, sometime after Prabhupada's departure, Dr. Patel admitted to the devotees, I should have surrendered. He had later, after the fact, because he missed the opportunity, he never took initiation. You see, because tad vidhi panipasena parispasena sevya ubhidi extenti ganam ganastatva darshanam, that mood, approach bona fide spiritual master and inquire from him submissively. So that was not, he was so caught up in this joking business that and playing the role of a jnani, so much Vedas he was quoting, but he was so caught in this that he missed the opportunity to become a disciple.
Srila Prabhupada ke tirubhav ke kuch samay baad Dr. Patel ne bhakton se aake ye admit kiya ki unhone kaha ki mujhe samarpit kar dena chahiye tha, kyunki समर्पित करने का अर्थ था कि मुझे उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए थी, एक शिष्य की तरह करना चाहिए था, क्योंकि कि मैंने सारा समय उनके साथ एक घमंडी ज्ञानी की तरह मैं उनसे वार्तालाप करता गया और शास्त्रों से बहुत सारे श्लोक भी उद्धृत करते थे, परंतु उनको बाद में इस चीज का एहसास हुआ.
So years later he expressed his regrets to the devotees, I should have surrendered, because he was not qualified. The Prabhupada didn't offer him initiation, he wasn't qualified because he wasn't surrendering, you see. Although he was a friend of Prabhupada and Prabhupada enjoyed his company on the morning walks and Prabhupada enjoyed the talks, but he wasn't surrendered, you see. So that is required. As a disciple is supposed to surrender to Guru, that is required.
कुछ सालों के बाद डॉक्टर पटेल ने यह बात भक्तों से कही थी कि शायद मुझे शरणागत कर देना चाहिए था, परंतु उन दिनों वह इसको शरणागत नहीं कर पाए और श्रीला प्रभुपाद से जो उनका संबंध था एक मित्र की तरह ही था. श्रीला प्रभुपाद ने ना तो उनको दीक्षा देना ऐसा कुछ बोला, ना उन्होंने भी कभी ऐसा निवेदन किया, क्योंकि दीक्षा लेने का अर्थ है या शिष्य बनने का अर्थ है हमें समर्पित करना पड़ेगा, परंतु जो उनका संबंध था एक मित्र के रूप में था, वे समर्पित नहीं थे.
Although Juhu was out in the countryside, still there were buildings in the area, there were people living in the area, within hearing distance of the temple.
जो जुहू है वह शहरों के बाहर था और वहां पे फिर भी कुछ इमारतें थी.
There used to be complaints, the neighbors would complain to the police, noise.
जो पड़ोसी है वहां पे मंदिर के वह पुलिस को शिकायत करते थे आवाज को लेकर, शोर को लेकर.
Devotees like to make a lot of noise, you know. 5 madungas, 7 madungas, 6 wampers, 10 kartals. The devotees like to make a lot of noise, you know.
Maharaj bata rahe hain ki bhakton ko shor machana bahut hi pasand hai. 5 madunga, 7 madunga, 10 wampar, 20 kartale, bahut acha lagta hai bhakton ko.
You know, wampers.
Wampar kartals.
This kind of kartal here, these big kartals. These big kartals, wampers. We call them wampers. We call them. So this and some of the lectures you will hear Prabhupada's talking about how they don't mind the sound of the garbage trucks, terrible noise, and he would sometimes imitate the sound of made by garbage trucks. No, they don't mind the sound of a garbage truck, very noisy.
और श्रीला प्रभुपाद कई बार अपने लेक्चर्स में बताते थे कि जो पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जो कूड़ा उठाने वाले ट्रक हैं वे इतनी जोर जोर से आवाज करते हैं और श्रीला प्रभुपाद कई बार उन ट्रक की तरह आवाज निकाल के दिखाते थे लेक्चर्स के अंदर.
But the holy name of Krishna, Hare Krishna Maha Mantra, they say, noise.
परंतु जो भगवान के दिव्य नाम है हरे कृष्ण महामंत्र उनको वे शोर कहते थे.
Bhagavad Gita, Krishna makes some comment, is it not?
भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं.
How the devotees enjoy hearing his holy name.
कि किस प्रकार से पद बहुत रैलिश करते हैं, बहुत आस्वादित करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र.
Demons run here and there. The demons run on hearing the holy name. Sometimes they plug their ears.
एक तरफ जब भक्त बहुत आस्वादन करते हैं भगवान के दिव्य नामों का, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कान बंद करके इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं.
I can't recall so clearly, but I think things had calmed down a bit by the time I got there in 1974.
महाराज कह रहे हैं मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, परंतु जब मैं वहां गया 1974 में तो वातावरण कुछ कुछ ठंडा पड़ चुका था.
But in the early days, so the transaction to buy the land apparently took place in 1971.
तो जो ये ट्रांजैक्शन हुआ भूमि लेने के लिए 1971 के बाद.
And then after the cheating by Mr. Nair and so forth, and complaints about noise. He was, Mr. Nair was, he had a huge influence politically in the area. He must have been buying off the politicians. So the politicians, although there were some pious politicians that were defending ISKCON, and others that were siding with Mr. Nair because of his being wealthy and owning so much property and all that. So there was this fight going on between the supporters of ISKCON and those who considered them a nuisance.
तो मिस्टर नायर के इस धोखाधड़ी और पड़ोसी के द्वारा बहुत ही शोर आने की शिकायत है कि बीच मध्य भी जो मिस्टर नायर है क्योंकि एक राजनीतिक में उनका बहुत प्रभाव था तो कुछ राजनीतिक लोग ISKCON को सपोर्ट करते थे और कुछ मिस्टर नायर को सपोर्ट कर रहे थे और आपस में लड़ाई हो रही थी.
This is probably in the Leelamrita, how later there was, when Mr. Nair and his, he had control of the police.
ये लीलामृत में भी आता है कि किस प्रकार जो मिस्टर नायर है उनके पुलिस के अंदर भी बहुत कॉन्टैक्ट थे.
And the complaints from neighbors about noise that made it possible for the police to come in and harass the devotees. There were some serious, you know, the word altercation.
और क्योंकि पुलिस के पास बहुत शिकायतें थी पड़ोसियों की ये शोरगुल की और नहर के द्वारा भी उनके कॉन्टैक्ट वगैरह थे तो इसलिए पुलिस के लिए संभव हो सका कि वे मंदिर के भूमि के अंदर आए और वहां पे जो इतने भक्त हैं उनको बहुत ही हैरास करते थे बहुत ही तंग करते थे
At one point, the police came along with some, I suppose there must have been some gundas along with them, something.
एक बार पुलिस आई बहुत सारे लोगों के साथ शायद वो सब गुंडे ही थे
And they were going to, they came with torches.
और वे टॉर्चेस के साथ आए
They were going to cut down Radharasa Bihari's shed. They were going to cut it down.
और वे कटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए थे वे उस शेड को काटना चाहते थे जिसके अंदर राधारास बिहारी के विग्रह स्थित थे
I don't know if it's mentioned, it's probably mentioned in Leelamrita, I don't know.
लीलामृत में भी इसका प्रसंग आता है
My god sister Mayantahili, she changed herself to a temple one and said, you're going to have to kill me first.
तो महाराज की गुरु बहन श्रीमती मालती देवी उन्होंने अपने आप को चेनों से बांध लिया उस शेड के पिलर्स के साथ और उन्होंने पुलिस को कहा कि अगर तुम शेड को काटना चाहते हो तो पहले तुम्हें मतलब मुझे मानना पड़ेगा उसके बाद ही तुम ये कार्य कर सकते हो
So she's guaranteed to go back to home. No matter what happens in her life, she's guaranteed to go back to Godhead. The gratitude of Srila Prabhupada and Srishi Radharasa Bihari, they will never forget her, you see. Even though decades later she's had to go out working at an outside job and just to keep a roof over her head and all this. But Krishna...
उन भक्त के जीवन में कुछ भी हो जाए परंतु उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है श्री श्री राधा रास बिहारी और श्री प्रभुपाद उनके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे और कुछ सालों के बाद कई दशकों के बाद भी जाके उनके जीवन में देखते हैं कि वे किस तरह से मंदिर से बाहर गई माता जी और उन्हें एक कंपनी में जॉब लेनी पड़ी और जिसके द्वारा वे निर्वाह कर सके परंतु कुछ भी हो उनके जीवन में उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है उनके इस कार्य के लिए
सो दीज आर सम ग्लिम्पसेस एट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जुहू प्रॉपर्टी बिगिनिंग विद दिस नवंबर 1971
तो ये जुहू भूमि के इतिहास के कुछ झलके हैं
जग गुरु सर्वपाल की जय गिरिराज गोवर्धन की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री राधिकृष्ण की जय नताय गोपाल प्रभु हरि हरि बोलो
इस भक्ति माधुरी गोविंद महाराज की जय